तीन प्रकार के शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये जो बाहर शरीर दिख रहा है आंखों से, जो पांच तत्वों से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांच तत्वों से जो बना है, गुरबानी भी प्रमाण है, पांच तत्व को तन रचियो जानो चतुर सुजान जेते उपजियो नानका लीनता है मैंने। पांच तत्वों से ये शरीर बना है, ठीक है जी। ये स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर को अन्नमय कोष भी कहते हैं। ये जैसा अन्न खाएगा ऐसे स्थूल शरीर बड़ा भी होगा, छोटा भी होगा, इसके आकार परिवर्तन होते हैं अन्न के अनुसार, समझ गए ना बात। ये स्थूल शरीर है, ये अन्नमय कोष है, और ये दूसरा है सूक्ष्म शरीर। पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पांच प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार, इस 19 को, ये जो 19 हैं और इसमें चेतन का प्रतिबिंब, समझिए कि क्योंकि यदि चेतन की शक्ति नहीं होगी तो फिर तो ये कुछ भी नहीं है। जो इस जो 19 तत्व हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, पांच प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 और चेतन का प्रतिबिंब, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं।
पूरी चेतन नहीं हो सकती, चेतन का प्रतिबिंब,
चेतन की शक्ति होती है ना, चेतन की शक्ति होती है ना, चेतन तो व्यापक है,
चेतन व्यापक,
चेतन व्यापक है ना, तो चेतन, चेतन तो व्यापक है, समझे ना, उसकी शक्ति ही काम करती है ना। अच्छा, दूसरा चीज, तीसरा है कारण शरीर। कारण शरीर अविद्या को कहते हैं, समझे कि नहीं। अविद्या कारण शरीर है क्योंकि वो अविद्या के अंदर ही अनेक जन्मों के जो कर्म हैं वो बीज रूप से पड़े होते हैं। जन्म जन्म की इस मन को मललागी काला हुआ से, वो जन्म जन्मांतरों के जो कर्म है ना वो अविद्या में बीज रूप से लय होते हैं। जैसे आप देखना धरती में बीज पड़े होते हैं, लेकिन जब बरसात आता है, बरसात में पानी पड़ता है तो हजारे छोटे छोटे पौधे, घास वगैरह सारे उग जाते हैं, उग जाते ना, तो किसी ने बीज तो डाला नहीं, वो दो चार छः महीना पहले का बीज पड़ा हुआ है। इसी तरह से सारे जीवों के जो कर्म हैं वो ईश्वर के अंदर स्टोर होता है, हर एक व्यक्ति का। जब महाप्रलय होता है, जब कोई नहीं रहता, सिर्फ एक निर्गुण निराकार परमात्मा होता है, सारे जीवों के कर्म उसमें जो है बीज रूप में पड़े होते हैं। सारे जीवों के कर्म उसको प्रेरित करते हैं ईश्वर को, फिर जाकर के ईश्वर जो है एको हम बहुश्याम पर जाई, मैं एक हूँ और अनेक हो जाऊँ। सुखमणि साहब में भी कल ही आया था, एक से अनेक भय आया ना कल ही, जो है सो अब देख भी लेना।
चाव साहब भी आता है, एक अनेक,
एक अनेक व्यापक पूरक जद। मेरा कहने का भाव जो है ना, जब उदकरह करा करतारा तब तब प्रजातर दे अपारम, मुझे याद नहीं है पंक्तियां। गुरबानी में कितने जगह है, गीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरिया,
एक है फिर भी अनेक,
एक है अनेक है फिर एक है। वो जो है ना भाव यही है कि एक एक परमात्मा से ही जो है ना सब कुछ हुआ। सुखमणि साहब यहाँ है, नहीं नहीं तो एनीवे। तो ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीन शरीर हो गया ना। जब कोई आदमी मरता है, किसी की जब मौत होती है, तो ना तो आत्मा की मौत होती है ना स्थूल शरीर की मौत होती है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, और स्थूल शरीर जो है ये पांच तत्वों से बना है, पांच तत्वों में लय हो जाता है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, पांच प्राण और मन बुद्धि, ये जो 9 है, 19 जो है, ये शरीर से निकल जाता है। इस शरीर से निकलने को ही मौत कहते हैं। और ये जो 19 है, इसके अंदर एक ऐसा ऑटोमेटिक कैमरा है समझ गए कि नहीं, कि जो भी हम सोचते हैं, जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी स्वाद लेते हैं, जो भी सूंघते हैं, जो भी कठोर कोमल का अनुभव करते हैं, जो भी पांच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान करते हैं, पांच कर्म इंद्रियों के माध्यम से कर्म करते हैं, वो ऑटोमेटिक कैमरा जो है वो रिकॉर्ड करता है। हम जितना मर्जी छिप के पाप करें या पुण्य करें, इसीलिए कहते हैं ना कि सात कमरे के अंदर भी बंद करके यदि भक्ति करोगे ना, तो वो आज न कल जो है वो दरवाजा तोड़ के प्रकट हो जाएगा कि ये भक्त है। बात समझिए, इसी तरह से सात दरवाजे बंद करके भी कोई पाप करेगा तो पाप भी आज न कल प्रकट हो जाऊंगा। बात समझ गए ना। तो हम पुण्य करें या पाप करें, जितना मर्जी छिप कर करें, जो सूक्ष्म शरीर है ना वो सारा रिकॉर्ड करता है, और नेक्स्ट जन्म जो होता है वो अपने कर्मों के अनुसार ही होता है। कीता पाइये आपना सघार भूली क्यों घालिए, ऐसा है आता है ना। जो भी हम इस संसार में भुगत रहे हैं वो अपना है, समझे, अपना ही कर्म आता है। कितने जगह इस तरह की पंक्तियां हैं कि अपने ही कर्मों का फल मिलता है। ये मोटा मोटी याद रखो कि जहां जहां से हमको सुख मिलता है वो हमारे ही अच्छे कर्मों का फल है, जहां जहां से हमको दुख मिलता है वो हमारे ही बुरे कर्मों का फल है। कीता पाइये अपना सघाल बुरी क्यों खाली, समझेगा। और भी जितने प्रमाण आप गुरु ग्रंथ साहब से कहीं से भी ढूंढ लेना, लेकिन सिद्धांत यही है। अच्छा, जो चौथा है उसको तुरी कहते हैं। ये तीन शरीर हैं और चौथा तुरिया है। जो चौथा तुरिया है वो उसकी अलग अवस्था नहीं होती, उसकी अलग अवस्था हम कहते हैं, इसलिए तीनों अवस्थाओं के अंदर जो चेतन है, जानने वाला साक्षी, उसको तुरिया कहते हैं। जब एक अवस्था होती है जैसे जागृत है तो स्वप्न और सुसुप्ति नहीं होती। जब स्वप्न होता है तो सुसुप्ति और जागृत नहीं होता, और जब गाढ़ी नींद होती है तो जागृत और स्वप्न नहीं होता। एक अवस्था होने पर दो नहीं होता, लेकिन जो चेतन है वो तीनों अवस्थाओं में धागे की तरह पिरोया होता है, समझे ना। वो तीनों अवस्थाओं में जो धागे की तरह जो पिरोया हुआ जो चेतन है उसी को तुरिया अवस्था कहते हैं। उसका कभी अभाव नहीं होता। वो जो तीन अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, इसका कभी भाव होता है, कभी अभाव होता है, कभी होता है, कभी नहीं होता है।
तुरिया दृष्टमान से, दृष्टा से देख के वहां से चेतन दे,
उसके रहते ही तीनों अवस्थाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन चेतन जो है, जो तुरिया अवस्था है, उसका कभी अभाव नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कभी वो नहीं नहीं होता, वो ऑलवेज होता है, ऑलवेज एंड एवरीवेयर जो है ना, वो जो चेतन है, साक्षी है, उसी को तुरिया अवस्था कहते हैं।
उसको आत्मा भी कह सकते हैं।
आत्मा कह दो, दृष्टा कह दो, साक्षी कह दो, जो मर्जी कह,
निर्गुण, निर्गुण भी कह सकते
हैं। हाँ, निर्गुण है, निर्गुण निराकार ही है, और क्या है, समझे कि नहीं। हाँ, जो एक उपाधि के अंदर आ जाए तो उसको जो है हम साक्षी कहते हैं, आत्मा कहते हैं, और उपाधि के बगैर जो है उसको ब्रह्म कहते हैं। तो आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। जैसे एक ही आकाश जो महाआकाश है, जो चारों तरफ खाली जगह है, एवरीवेयर, उसको हम महाआकाश कहते हैं, और वही आकाश एक घड़े के अंदर जो खाली जगह है उसको घटाकाश कहते हैं। तो जो बाहर का आकाश है और घड़े के अंदर का आकाश है, दोनों एक है, सिर्फ घड़े के कारण ये अलग आकाश लगता है, और इसका नाम घटाकाश उपाधि है,
घड़ा हुआ उपाधि है।
हाँ, घड़ा उपाधि हो गया। इसी तरह से जो व्यापक चेतन है, व्यापक चेतन को ब्रह्म कहते हैं, समझ गए ना, व्यापक चेतन को ब्रह्म कहते हैं, और वही व्यापक चेतन अंतःकरण रूपी घड़े के अंदर जो है चेतन,
उसको जीव कहते हैं।
नहीं नहीं, उसको साक्षी कहते हैं, उसको आत्मा कहते हैं। जीव तो जन्मता है मरता है, साक्षी आत्मा जन्मता मरता नहीं है, समझ गए ना बात। जो साक्षी है, जो आत्मा है, उसका न जन्म होता है न मौत होती है। जो साक्षी है वो आत्मा है, वो ब्रह्म का स्वरूप है। साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, नहीं भेद को गंध, राग द्वेष मति के धर्म तामे माने अंत। राग द्वेष सुख दुख ये सारे बुद्धि के धर्म है। आत्मा का इसलिए गुरबानी में प्रमाण है कि आत्म चीनस परमात्म सोई, जिसने आत्मा को जाना वही परमात्मा है। आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुविधा एको में। अर्थात जो घड़े के अंदर आकाश है आत्मा, और जो बाहर का आकाश है परमात्मा, दोनों एक है। और जो ऐसा जानता है वो ब्रह्मज्ञानी है।
जान लेने से अभ्यास करना पड़ता है ऐसे,
जानना, ओनली जानना। लेकिन जानना भी दो तरह का है, एक परोक्ष ज्ञान है एक अप्रोक्ष ज्ञान है। जो कोई अनुभवी आदमी जिसने अनुभव किया है उसके लिए वो अप्रोक्ष है, समझे ना। और किसी ने मुझे बताया है वो मेरे लिए परोक्ष है। लेकिन जो जिसने बताया है उसके कहने पर चल करके अभ्यास के द्वारा जब हमारे अंदर प्रकट होगा तो हमको भी अप्रोक्ष हो जाएगा, समझिए। अप्रोक्ष का भाव ये है साक्षात अनुभव।
जो प्रेमा भक्ति है और ज्ञान का मार्ग है गुरुमत में दोनों
स्वीकार है।
स्वीकार है।
हाँ, ऐसा है कि ब्रह्म ज्ञान और भक्ति ये दो मार्ग हैं ईश्वर की प्राप्ति के। भक्ति में प्रेम बीज है, प्रेम के बगैर भक्ति नहीं होगा, समझ गए कि नहीं। प्रेम बेस है, जैसे अपने इष्ट के प्रति जिसको हमने इष्ट बनाया, जैसे सगुण साकार को इष्ट बनाया, गुरु नानक देव जी को बनाया, दसम पातशाह को बनाया, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी को बनाया, समझ गए ना। भक्ति में भक्त अपना कोई इष्ट बनाता है और उस इष्ट की प्राप्ति के लिए सब कुछ करता है। भक्त उसका चिंतन करता है, उसके लिए एवरीथिंग, उसके लिए जीता है। तो प्रेम में समर्पण होता है, प्रेम में दे के खुश होता है व्यक्ति, और वासना में लेके खुश होता है, समझ गए कि नहीं। जैसे जैसे हृदय में प्रेम पैदा होगा वो सोचेगा कि सब कुछ दे दें, प्राण भी दे दें, प्राण दे के भी खुश होता है, समझे कि नहीं। और जहाँ प्रेम नहीं होगा वहाँ पर लेके खुश होगा। तो भक्ति में प्रेम बीज है, इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहे हैं, साच कहो सुन ले हो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। ये भक्ति है। और ब्रह्म ज्ञान में वैराग्य बीज है, समझे ना। भक्ति में मैं से तू की यात्रा है, तू तू करता तू भया, मुझ में रहा ना हूँ, आपा पर का मिट गया, जित देखा तित तू, तू ही रह, तू ही तू, मैं ना, मैं का कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान में तू का कोई महत्व नहीं है, सब कुछ मैं। लेकिन ये जो मैं है वो शुद्ध मैं है, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से जो अलग शुद्ध चेतन है उसको मैं कहा गया है, और वही ब्रह्म स्वरूप है, अहम ब्रह्मास्मि। जिस तरह से गुरुवाणी में भी आया है, सभना जिया का एक दाता, सो जो परमात्मा है वो मैं विसर न जाई, सबको भुला दो, लेकिन एक चीज याद रखो कि जो सभना जिया का एक दाता जो ईश्वर है, ब्रह्म है, वही आत्मा रूप से मेरे अंदर है, विसर न जाई, ये ऐसा जो है सो ज्ञान रखे। तो ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में वैराग्य का महत्व है। वैराग्य के बगैर जो है सो ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु महाराज ने कहे हैं, बिन वैराग ना छूटस माया। वैराग्य होने पर व्यक्ति सबसे टूटता है, सबसे टूटता है, दुनिया से टूट जाता है, यहाँ तक कि अपने शरीर से भी टूटता है। जब मर ही जाना है तो किसके साथ संबंध बनाना, धन क्यों इकट्ठा करना है, पत्नी क्यों बनाना है, समझे ना। सबसे टूटता है व्यक्ति, बच्चे क्यों बनाना है, शरीर का पोषण क्यों करना है, समझे ना। आदमी सबसे टूटता है, न इति, इसीलिए वेद में जो है ना इसको कहा गया है, मैं ये भी नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रिया नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, समझे ना। दैट विच रिमेन्स ओनली, जो सब कुछ अलग करने के बाद जो शेष रह जाता है, है? वो शुद्ध मैं हूँ और वो शुद्ध मैं परमात्मा का स्वरूप है, ये ब्रह्म ज्ञान है। तो ब्रह्म ज्ञान में जो है वो जो है सो तून की कोई महत्व नहीं है, वो सब कुछ जो है, सब कुछ परे करके जो शेष रह जाता है, दैट विच रिमेन्स ओनली, वो शुद्ध मैं हूँ और मैं ही ब्रह्म स्वरूप।
जो अहंग्री, उसको अहंग्री उपासना भी कहते
हैं? नहीं, अहंग्रह उपासना अलग है। निर्गुण निराकार की भक्ति को अहंग्रह उपासना कहते हैं। निर्गुण निराकार, देखो एक एक जो है प्रतीक उपासना, एक अहंग्रह उपासना। प्रतीक उपासना है कि किसी मूर्ति का ध्यान करके उसकी भक्ति करना, जैसे गुरु नानक देव जी की मूर्ति है, गुरु नानक देव जी की मूर्ति को अपने मन में बसाया है, गुरु की मूर्त मन में ध्यान आता है ना, गुरु की मूर्ति को अपने मन में धारण कर लिया, गुरु गोविंद सिंह जी को धारण कर लिया, गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपने मन में धारण कर लिया, तो ये जो भक्ति है इसको प्रतीक उपासना कहते हैं। प्रतीक भक्ति है कि किसी मूर्ति को, को कृष्ण को राम को, किसी को मन में एक छवि बना लिया और उसकी प्राप्ति के लिए हमने प्रार्थना किया वाहेगुरु से, ठीक है। ये हो गया सगुण साकार की भक्ति। और एक निर्गुण निराकार की भी भक्ति होती है जिसको अहंग्रह उपासना कहते हैं, उसमें किसी की मूर्ति को मन में नहीं लाते। ओंकार जो है महामंत्र, ओम जो है, ओम को जो है ओम की उपासना करते हैं।
ओंकार ओम एक ही बात है,
ओंकार ओम सेम चीज है, सेम नथिंग।
बोलने का जो साउंड है वो
साउंड का फर्क है, ऐसा है कि जो है ओम जो है ना, ओम में भी आकार उकार मकार और अमात्रा है, समझ गए कि नहीं। आकार जो है, ये सारी सृष्टि आकार है, इसका जो सूक्ष्म शरीर ईश्वर का है वो मकार उकार है, और कारण शरीर जो है वो मकार है, और तीनों शरीरों से जो वखरा है वो शुद्ध ब्रह्म है, समझ गए ना। तो ये ओंकार की भी यही है, सिर्फ जो है ओंकार कह दो, ओम कह दो, आमीन कह दो, हैं, और जैसे बोधी लोग जो है ओम मणि पद्मे हूँ बोलते हैं, वो सेम चीज है। और ओंकार एक जो है सो शाश्वत है, इटर्नल है। वास्तविक में देखा जाए तो जब किसी भी व्यक्ति को ब्रह्म का अनुभव होता है तो वो ओंकार रूप से होता है। ओंकार ना हिंदुओं का है, ना सिखों का है, ना मुसलमानों का है, ना ईसाइयों का है, ओंकार साझा है, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पर जो व्यक्ति ओंकार की उपासना करता है कि ओंकार आकार उकार मकार और अमात्रा, इसी तरह से जीव का जो है, जीव का जो स्थूल शरीर है ये आकार है, जीव का जो सूक्ष्म शरीर है वो उकार है, और जीव का जो कारण शरीर है वो मकार है, और तीनों शरीरों को जो जानने वाला साक्षी है वो अमात्रा है, समझे ना। तो वो जो जो ओंकार के अंदर आकार उकार मकार है, वही हमारे शरीर के अंदर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर है, और उसके अंदर जो अमात्रा है वही हमारे अंदर आत्मा रूप से है। जो व्यक्ति अभेद करके उपासना करता है, जो ओंकार की उपासना अपने के साथ अभेद करके, अभेद का मतलब मिला करके, कि ओंकार मैं हूँ, ओंकार मुझसे भिन्न नहीं है, ओंकार मेरा स्वरूप है, जो व्यक्ति अभेद करके उपासना करता है, ओंकार का जाप करता है, उसको अहंग्रह उपासना कहते हैं। ओंकार की उपासना से निर्गुण परमात्मा का बोध होता है, और सगुण साकार की परमात्मा से वो सगुण परमात्मा प्रकट होते हैं। जैसे हम गुरु नानक देव जी का ध्यान करेंगे, बार 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 महाराज प्रकट हो, तो गुरु नानक देव जी महाराज जो है वो प्रकट होंगे, वो दर्शन देंगे, और वो पूछेंगे कि तुम्हारी क्या इच्छा है, क्योंकि गुरु महाराज ने वचन दिए, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, जो आदमी प्रकट होंगे, धन मांगेगा धन मिलेगा, मोक्ष मांगेगा मोक्ष मिलेगा, तो वो प्रकट होंगे तो वो देंगे। लेकिन जो निर्गुण निराकार परमात्मा का जब बोध होगा ना, उसमें इच्छा नहीं होती, वो तो पहले ही, क्योंकि ओंकार की जो उपासना होता है वो किसी इच्छा लेके नहीं होता, वो अभेदता के लिए होता है कि हम जो है हम वो वाहेगुरु के साथ अभेद हो जाए, एक हो जाए, वो दर्शन के लिए नहीं होता, उसमें मिलने के लिए होता है।
जो विराट उपासना है वो सर्गुण से ऊपर है, वो जो सर्गुण
विराट की उपासना जो है ना, वो एक प्रकार से सगुण की उपासना ही है। सब स्थूल हो गया ना,
हाँ जी, क्योंकि जो सर्वव्यापक कोई विराट सर्वव्यापक ही है ना,
हाँ हाँ हाँ,
वो निर्गुण वो सगुण से सर्गुण से थोड़े से ऊपर है कि वो सर्गुण ही होगी।
सर्गुण ही है, सर्गुण ही है, समझे ना। एक देखो ना, जो विराट कहते किसको हैं, जो ये पृथ्वी एवरीवेयर है, पहाड़ पत्थर ये जितने जीव जंतु सारा जो है इसको विराट कहते हैं, ये ईश्वर का स्थूल शरीर है, समझे ना। वही स्थूल शरीर भक्तों की भावना को रख करके एक रूप में सामने आते हैं। ये तो सूक्ष्म में जानो स्थूल, वो जो विराट है परमात्मा, वो छोटा शरीर बना ले बड़ा शरीर बना ले, ये तो उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है। वो भक्तों के लिए जो है ना, वो बड़े बन जाएं छोटे बन जाएं, ये तो अब देखो ना, भगवान कृष्ण जो है, जब उसकी माँ जो है ना यशोदा कहती है तू मिट्टी खाया मुंह दिखा, हैं, कहते मैं मिट्टी नहीं खाया, कृष्ण कहते हैं ना छोटे, कहते नहीं नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाया, नहीं नहीं जो है तुम मिठाओ, ये डंडे दिखाते हैं, ये यशोदा माँ जो है डंडा दिखाती है, तो भगवान कृष्ण मुंह जो है खोलते हैं, मुंह खोलते हैं तो देखते हैं कि सारा ब्रह्मांड, तीनों लोक, ब्रह्मा विष्णु में सारे अनंत, सारा का सारा ब्रह्मांड इनके मुँह में, वो आँख बंद कर लेती, डर जाती कि जिसको मैं मुँह खोलने के कर रहे हैं, तो वो जो है सो सारा ब्रह्मांड तो इनके मुँह में है। तो वहाँ पर ये जो बात है ना, ये जो सगुण परमात्मा है, वो चाहे तो कीड़ी भी बन जाए, वो चाहे तो मिंट में बड़ा शरीर। 52 अवतार में परमात्मा जो है, जब बलि राजा से जो है सो कहता है ना कि हमें 3 पग धरती दो, भिक्षा में मांगा ना, तो उस वेले तो नाटा था जी, और जब उन्होंने विराट रूप धारण किया तो 1 पाँव में सारी पृथ्वी को नाप लिया, इतना बड़ा आकार उन्होंने बना लिया ईश्वर ने कि 1 पाँव में पूरी धरती को नाप लिया और दूसरी पाँव में सारा आकाश वगैरह पताल ले लिया। कहता है तीसरा पाँव में कहाँ रखूँ मैं, 3 पाँव धरती मांगा है ना, मैं तीसरा पाँव कहाँ रखें। बलि कहता है हे भगवान आप चिंता ना करें, 3रा पग रखने का जगह है। कहते हैं वो 3रा पग मेरे सिर पर। ये देखो बलि राजा की भक्ति देखो, हैं, फिर जा कर के ना भगवान कहते हैं कि तू बलि भावे तू असुर जाति में है लेकिन तू धन्य है, तेरे जैसा कोई भक्त नहीं है, मैं सारी जिंदगी जो है हमेशा तेरे दरवाजे पर मैं दरबान बन करके रहूँगा। देखो वर देते, तो ये जो है सो ये तो भक्तों की लीला को जो है, भक्तों की भावना को देख करके प्रभु जो है ना बड़े छोटे सब कुछ हो जाते हैं।
जो 5 कोश की थ्योरी है,
हाँ 5 कोश, 5 कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। स्थूल शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं और 3 कोश जो है वो सूक्ष्म शरीर में होता है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश को स्थूल शरीर कहते हैं और कारण शरीर जो है अविद्या उसको जो है आनंदमय कोश कहते हैं।
जो मनमय कोश है, गुरबाणी में वचन आता है मन तो ज्योत स्वरूप है, नमो पहचान, जो जो आत्मा मन में कोश से ऊपर है, तो कुर्बानी में ये वचन आता है कि मन तू ज्योत स्वरूप है, उसका उसका थोड़ा सा,
हाँ, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान।